તારીખ 5-10-1993 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29.
निशंकता से निर्भयता उत्पन्न होती है और उससे निसंगता प्राप्त होती है। हिंदी में नहीं तो हिंदी में अच्छा पाएंगे
ना, गुजराती
नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ सकते हैं गुजराती? हाँ कोई बात नहीं, बोलेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। निशंकता से निर्भयता उत्पन्न होती है। जो वस्तु के स्वरूप के विषय में निशंग होते हैं तो थोड़ा नीचे हो
जाए
होते क्या, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है तो फिर भय काहे का, फिर भय रहने का नहीं है। इसलिए जिसको भी भय प्रकृति है उनके लिए ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, इसके लिए ये सिद्धांत बन गया। क्योंकि भय तो शंका उत्पन्न करती है, क्या होगा कैसे होगा, जिसको वस्तु का स्वरूप ज्ञान में है जो होने वाला सो होगा, और हमारे में तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा स्वरूप तो अव्याबाध स्वरूप है, कोई जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जो हमें बाधा पहुंचा सके। इसी कारण से वस्तु का स्वरूप जिसको ज्ञान में है उसको निर्भयता होना चाहिए, और जो निर्भय है वो निसंग मैंने असंग रह सकता है, अकेला रह सकता है। क्योंकि तो अकेले रहने में भय पहला सबसे पहले तो भय पैदा होता है। तो मेरे पास अगर कोई नहीं है तो क्या होगा, मुझे कोई जरूरत पराधीन वृत्ति है, मेरी जरूरत लग पड़ेगी तो क्या होगा, तो उसको निसंगता नहीं आ सकती, असंग दशा में वो नहीं रह सकते। जो निर्भय है वही असंग दशा में रह सकते हैं। खास करके ये बात मुनियों को तो सीधा लागू पड़ता है, क्योंकि मुनि असंग रहते हैं। दूसरे लोगों को तो मुमुक्षों को तो परिवार में रहना होता है, मुनि अकेले रहते हैं, क्यों रह सकते हैं, वो निर्भय है इसलिए रह सकते हैं। कोई प्राणी का भय नहीं, कोई चीज का भय नहीं, कोई प्रतिकूलता का भय नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए जिसको निशंकता है वो निर्भय रह सकते हैं, और निर्भयता है वो निशंग रह सकते हैं। अब पृथक पत्र का प्रारंभ करते हैं। तो प्रकृति के विस्तार से जीव के कर्म अनंत प्रकार की विचित्रता से प्रवर्तन करते हैं। प्रकृति के विस्तार से मैंने बहुत अनेक असंख्य प्रकार की प्रकृति है, कर्म प्रकृति, तो जीव के भी अनंत प्रकार की विचित्रता रूप प्रवर्तन करने देखने में आता है। किसी की क्या प्रकृति, किसी की चित्र विचित्र प्रकृति, अनेक विध होती है, और इससे दोष के प्रकार भी अनंत भाषित होते हैं। और वो प्रकृति में जीव का परिणाम लग जाता है उदय में, तो अनेक प्रकार के दोष भी इसके उत्पन्न हो जाते हैं, वो प्रत्यक्ष भाषित होता है। कोई कैसा दोष होता है, कोई कैसा दोष होता है, किसको कैसा दोष होता है, तो उन प्रकार की प्रकृति समझ में आ जाती है। क्या बात किया उन्होंने कि दोष के अनंत प्रकार है, क्योंकि कर्म प्रकृति के भी अनंत प्रकार है, और प्रकृति के उदय में जो जीव संसारी जीव तो जुड़ता ही है, तो उसको तो ऐसे ऐसे दोष होते ही रहते हैं। अब बात कहाँ ले जाना चाहिए, दोष को मिटाने के लिए क्या बात होना चाहिए, कि सबसे बड़ा दोष मिटाना चाहिए। पहले सिद्धांत ये है कि सबसे बड़ा दोष पहला मिटाना चाहिए, छोटा दोष बाद में स्वतः ही मिट जाएगा। इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं वो क्या करते हैं कि पहले छोटे छोटे दोष मिटाएंगे और बड़ा दोष ऐसे ही रह जाएगा। जैसे संप्रदाय में क्या होता है, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, वो करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, छोटी मोटी बहुत सी बातें में पूरे दिन उसी क्रियाकांड में लगा रहता है, और अपना दर्शन वो जो है तगड़ा उसको उसका तो विचार ही नहीं चलता है, कहीं सारे संप्रदाय में इसका विचार नहीं चलता है। जिनेन्द्र वर्णी का शब्द कुछ लिखा चार वॉल्यूम में, दर्शन मोह के शब्द आया तो दर्शन मोह के विषय में उसने तीन चार पंक्तियां लिखी हैं। हमारे वो चिरंजी लाल से तो काफी कोई रेफरेंस देखना है तो उसको देखता रहता है, तो उनको ये ताजुब हुआ कि सबसे संसार में परिभ्रमण करने वाला दर्शन मोह, तो उसी विषय में खाली तीन चार पंक्तियां लिखे, और सब बातों में तो बहुत सी बातें लिखते हैं। मुझे तो ये बोले आपने एक पूरा आर्टिकल लिखा है, तो इन्होंने तीन लिखे लिखा है, इनका अध्ययन भी इतना बड़ा है, बहुत इसका अध्ययन, उनको ये शब्दकोश तैयार होने में 12 साल लगा है, चार वॉल्यूम की तैयारी करने में उसको 12 साल लग गए। और मौन व्रत, किसी से बात नहीं करे वो, क्योंकि अपना टाइम भी बिगड़े बीच में, टाइम बिगड़ने से क्या होता है कि काम नहीं होता है, मौन व्रत ले लिया, तो रात को 12, 1, 2, 2, 3 बजे तक काम करे, 12 साल तक ऐसा काम, दर्शन के विषय में तीन पंक्ति तो चौंके कि इतना गंभीर विषय है तो तीन पंक्तियां लिखे, और इधर वो एक बड़ा आर्टिकल अपने यहाँ चलता है प्रयोजन से भी आना मतलब क्या है कि लोगों को ध्यान नहीं जाता, छोटे छोटे दोष पर ध्यान जाता है, ऐसा दोष नहीं होना कि जैसे अहिंसा का विषय है तो छोटे मोटे काम में हिंसा नहीं हो छोटे मोटे जीव की, वहां से लेकर के बहुत से प्रकार का ऐसा होता है, लेकिन बड़ा दोष पर ध्यान नहीं जाता है।
दर्शन इस सिद्धांत शब्द कोश ले એમાં તો અમે શું કર્યું છે કે કોઈ પણ વિષયને લઈ અને અમુક શાસ્ત્રોની આગળ સૂચિ આપી છે, લગભગ 30-35 શાસ્ત્રો હશે, અને એ 30-35 શાસ્ત્રોમાં એનો રેફરન્સ કઈ રીતે એ વિષયનો આવે છે એ રીતે એણે એમાંથી લઈને આમાં એણે રિફર કર્યું છે,
રિફર કર્યું છે, અને ક્યાં ક્યાંક એણે પોતે વિવેચન પણ કર્યું છે સંક્ષેપમાં,
છે બરાબર છે, આ છે વિવેચન
બધું જોયું, મચારાચાર જોઈ ગયો છે ખાસ ખાસ વાતો ઉપર, કારણ કે માણસે મહેનત ઘણી કરી છે તો આપણને તો વગર મહેનત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આ બાબત મેં શું કીધું, ઘણા રેફરન્સ લીધા તો દર્શન મોહનો વિષય જિનાગમમાં નથી આવ્યો 30-35
શાસ્ત્રોમાં,
એ કેમ કહી શકાય, ધ્યાન નહીં ગયા હે, મેરા તો એ પોઈન્ટ આઉટ કરે કે સબસે બડા દોષ હૈ ઇસ પર જીવ કા ધ્યાન નહીં જાતા, પર છોટે મોટે દોષ પર બહુ ધ્યાન જાતા હૈ, એ કાર્ય પદ્ધતિ विपरीत है, कर्म विपर्यास जिसको हम कहते हैं, कर्म विपर्यास में ये होना कि पहले सबसे बड़ा दोष को मिटाएं, छोटे छोटे दोष को बाद में मिटाएं, और स्वतः मिट जाएगा, ऐसा है। तो यह लिया है कि दोस्त तो अनंत प्रकार के जीव को होते हैं, वो तो प्रत्यक्ष दिखने में आता है, परंतु सबसे बड़ा दोष यह है कि जिससे तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न ही न हो अथवा मुमुक्षुता ही उत्पन्न न हो। तीव्र मुमुक्षुता मैंने ज्ञान दशा, सबसे बड़ा दोष यह है कि दर्शन मुख का अभाव नहीं जीव करता और ज्ञान दशा में मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं करता, ये जीव का सबसे बड़ा दोष है। अगर इतना नहीं हो तो कम से कम मुमुक्षुता तो आ जानी चाहिए, मोक्षता नहीं है तो प्रारंभ भी नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं है, मोक्ष मार्ग को पहुंचने के लिए प्रारंभ नहीं है, मोक्ष मार्ग तक पहुंचा जाए उसका प्रारंभ भी नहीं होगा मुमुक्षुता के बिना, ये सबसे बड़ा दोष लिया। गुस्सा किया ये सबसे बड़ा दोष नहीं लिया, किसी ने खून कर दिया ये सबसे बड़ा दोष नहीं लिया, देखो जुआ खेलता है कोई बड़ा दोष नहीं लिया, दारू पीता है बड़ा दोष नहीं लिया, क्या बोले दर्शन मोह के दोष कौन से होते हैं, चारित्र मोह के कौन से होते हैं, ये बात देखना।
दर्शन मोह के बारे में
तो
बिल्कुल ही अनजान
जीव, दूसरी जगह तो और हूँ तो वो एक बात रखो, गुरुदेव की कृपा से तो अपना तो तत्व ज्ञान का अभ्यास हमारे लोगों में लगा, दर्शन मोह की इतनी चर्चा नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी दिखेगा अरे तुम सोनगढ़ में तो भक्ति में नहीं है क्या, उधर में नहीं करते हो क्या, ऐसा पूछेगा, शास्त्र साधी में क्यों नहीं है वो इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन भक्ति में नहीं बैठे थे जान नहीं किया तो पूछेंगे ऐसा होगा। 254 लेना है, वर्षा मैन को बोला है कल बोले थे वो थोड़ा जा रहे हैं, उसका हेडिंग बहुत बढ़िया है, इसका जो हेडिंग है बहुत बढ़िया, ऐसा बहने सब एक साइड में भाई लोग भी आएंगे, आधे आधे में बहने आधे में ये भाई प्रकृति वाले के लिए बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है समझने लायक, क्यों भय होता है इसका कारण दे दिया है, निशंकता नहीं है वस्तु के स्वरूप के बारे में, हमने को जो कुछ सुना तो काफी सुना काफी पढ़ा, लेकिन हमें दृढ़ता निशंकता नहीं आई कि वस्तु का स्वरूप कैसा है, जैसे द्रव्य से देखे तो हमारी वस्तु अव्यापार स्वरूप है, हमारे भीतर में किसी का प्रवेश नहीं हो सके, ऐसा अभेद किला है आत्मा कि किसी का प्रवेश ही नहीं सुन, अभी आबाद कोई बाधा ही नहीं पहुंचा सके हमको, ये द्रव्य स्वरूप। अब बात रही पर्याय की, तो पर्याय तो जो होने वाली होगी, भाई भाई से कोई पर्याय बदल जाएगी क्या, भाई होने से कोई पर्याय बदल सकती है क्या, दोनों द्रव्य पर्याय दोनों का न्याय ऐसा है हमारे सामने, ये वस्तु का स्वरूप है, न्याय है मैंने ये वस्तु का स्वरूप है, तो भय हो गई नहीं, हम तो जैन दर्शन में आए तब से ये बात बोलते हैं हमारे लिए तो, कि भाई नाम का जो शब्द है वो हमारी डिक्शनरी में से निकल गया है, क्या हमारी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है, ऐसा बोलते हैं, शुरू से ऐसा बोलते हैं कि भाई नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है, एक दफे वो पाटनी जी के साथ नहीं चाहिए पाटनी के साथ चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ भाई स्थान हमको बताया, वो सोनगढ़ के कारण सब व्यवस्था 1.5 साल हमने संभाली ना कारण पूरा मैनेजमेंट का ट्रस्ट का, तो बोले कि यहाँ गुरुदेव के पास लोग जाते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, कई प्रकार की बात कर देते हैं, गुरुदेव को भी मान भी लेते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों को तकलीफ को मिल जाती है, गुरुदेव को कैसे है, मैंने कहा मुझे तो इन बातों से कोई भाई नहीं होता है, मैं जानता हूँ कैसे काम करना है। गुरुदेव को विश्वास में अपन रख सकते हैं परमात्मा, तो फिर कोई तो काम करने की पद्धति का सवाल है। तो उन लोगों का पद्धति नहीं रही, गुरुदेव को विश्वास नहीं रहना, हमारा तो पद्धति अलग थी। और काफ़ी समीप भी थे गुरुदेव के, नज़दीक भी थे हम लोग। उनको भाई नहीं होता है, उनको मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है ये शब्द, मेरी डिक्शनरी में नहीं है, किसी हालत में भी नहीं है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है और जिन सिद्धांत भी ऐसा ही है, और जीव को सबसे अधिक दुख, ज्यादा दुख भाई का ही है। एक तो संयोग आदि निवृत्ति है, पर संयोग की तो कोई भरोसा नहीं है, तब किसी का देह छूट जाए, तब किसी का श्रीमंता से दरिद्रता आ जाए, तब किसी को रोग आ जाए शरीर में, क्या क्या हो जाए, तो संयोग का तो कोई भरोसा नहीं। तो वो होवे नहीं होवे बात अलग है, लेकिन भय तो इससे पहले होता है। कभी क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम। संसार के सभी प्राणी भय से ग्रसित है, उतना ही नहीं भय से बहुत दुखी है। इनकी परिणति में वो चीज आ जाती है, पता ही नहीं उनको खुद को कि मुझे कितना भय की परिणति चलती है। कभी कोई प्रसंग बनता है तब ये भय लगता है, तो उनको मालूम पड़ता है कि मुझे बहुत भय हुआ, लेकिन वास्तव में तो परिणति थी, वास्तव में परिणति थी और भय हुआ है, ये बात है।
मिथ्यात्व का प्राण भूत वाच्य कोई है,
भय होगा होगा और होगा। दर्शन मोह वाले को भय होगा होगा और होगा, जिसका दर्शन मोह मंद हुआ उसको भय कम होता जाएगा, अभाव होने से भय चला जाएगा। मैं अभी आप बात सुनूंगा, पर्याय में कुछ फेरफार हो, संयोग में कुछ फेरफार हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है मेरा, मैं यूँ कहीं रहने वाला। मेरी गुण संपत्ति है अनंत, उसमें कमी बेसी होने का सवाल नहीं है, परिपूर्ण है, बढ़ने का कोई जगह नहीं है, कमी होने का कोई जगह नहीं है।
लोकेष्णा और भय या अविना भय संबंध
है। लोकेष्णा तो क्या है कि लोक संज्ञा के साथ रहती है, तो लोक संज्ञा तो उसको जहर समझे बिना, कालकूट जहर समझे बिना वो चीज जाने वाली नहीं है। लोकेष्णा तो लोक संज्ञा तो मिला नहीं चाहिए, ये तो सबसे पहले काम करना है। पहले जो हेडिंग दिया है उसमें बहुत बढ़िया बात सुनी है, श्रीमद राजचंद्र करके हमारे गुजरात में, और पहले दो पंक्ति में वो बात आई, कि संसार के संसारी जीवों को अनेक प्रकार के दोष होते हैं, किंतु सबसे बड़ा दोष मुमुक्षुता का अभाव है। कोई खून करता है, दारू पीता है, उन्होंने बताया है, थोड़ा ध्यान खींचने लायक चीज है। मुमुक्षुता नहीं आई तो सभी प्रकार के दोष अनिवार्य रूप से आने वाले हैं, आ ही जाएंगे, और मुमुक्षुता आई तो बच जाएंगे। इस नींद की बात है, प्राय मनुष्य आत्मा किसी न किसी धर्म मन में होता है, उसका जन्म होता है। मनुष्य में संप्रदाय है, देवलोक में संप्रदाय नहीं है, नारकी में नहीं है, त्रियंचों में किन गति में संप्रदाय नहीं होता। मनुष्य में तो कोई ना कोई संप्रदाय में मनुष्य का जन्म होता है, और उससे ही वह धर्म मत के अनुसार प्रवर्तन करता है। जिस संप्रदाय में उसका जन्म हुआ वो अनुसरण करने लग जाएगा। इसलिए कि वो तो बुद्धि भी कर्मानुसार ही नहीं होती है, जैसे कर्म लेके जीव आता है करीब करीब ऐसी उनकी बुद्धि होती है, क्योंकि आया क्यों उधर, उस प्रकार के कर्म के कारण से तो आया है। तो उनको तो अपने जो भी संप्रदाय में जन्म हुआ है उसी को फॉलोअप करना, अनुसरण कर लेना, ये बहुत सामान्य बात देखने में आती है। और ऐसा मानता है कि ये हम धर्म करते हैं या तो कुछ न कुछ धर्म के विषय में हमारी प्रवृत्ति है, परंतु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है।
प्रकरण चल रहा था, सीक्वेंस कैसे बैठती है कि जिस जीव को संसार की अपेक्षाएं महत्वाकांक्षाएं नहीं है उन्हें मोक्ष का ध्येय बनाया है, तो इनके लिए लोक की अल्प भी सुखेच्छा नहीं होना ये बहुत आसान है, वरना ये चीज आसान नहीं है। ये कोई मुनि की भूमिका की बात तो है नहीं कि चलो इसको कोई गृहस्थी नहीं है, जंगल में रहने वाले हैं, ऐसा तो है। अब गृहस्थी में रहने वाले जीव और उतनी वितरागता प्रकट भी नहीं है, यानी मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ है, तो मुमुक्षों की भूमिका में ये बात होना क्या ये संप्रदाय में करने वाले त्याग से अधिक चीज नहीं है क्या? लोग ये कहते हैं आप मुमुक्ष लोग त्याग तो करते हैं, रहते हैं तो दूसरे संसार ही रहते, वैसे घर में रहन सहन वैसे ही पूरे गृहस्थी, तो ये बातें करके आपने क्या किया? ये तो बातें ही बातें हैं, इससे पेट थोड़ा भरेगा, खाने से पेट भरता है, बातों से तो पेट नहीं भरता, ऐसा करते। देखिए कि दूसरों संसार की महत्वाकांक्षा आशा नहीं हो नास्ते से, और उसको अपना पल पल पर होने वाले दोष पर जागृति हो, अच्छी तरह जागृति हो, और तीसरा उसको संसार लोक के कोई भी चीज में अल्प भी सुपेक्षा नहीं हो, ऐसा अभिप्राय। तो ये क्या मामूली त्याग है क्या?
निर्धार ही अपूर्व है, अपूर्वता इस निर्धार में है, आज तक अनादि से नहीं हुआ।
बात तो वह अंतर परिणाम नहीं हुआ, बात से आप देखा है क्या?
अपने को दिखाना भी नहीं
है ना, अपने को चूंकि बात
ये जरूरी नहीं है कि कोई हमको ऐसा समझे।
पोता ने लागे छे कि
पोते પોતાને યોગ્યતામાં આવવાનો લાભ તો પોતાને છે. અનેક પ્રકાર કી દુઃખમય પરિસ્થિતિ સંસાર મેં હોતી હૈ, ઉસમે કોણ ભાગીદારી કર સકતા હૈ? બીમાર હુઆ કોણ ભાગીદારી કરેગા? ક્યાં કિસી કે સાથ અપના ઉદય એસા હુઆ કે હમ દુઃખી હોઈએ, કોણ ભાગીદારી કરેગા? ઉદય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોતા હૈ અપને આપસ મેં. એક હી આદમી સે હમારા ભાઈ કી પડતી, હમારા પિતાજી કી પડતી, હમારી નહીં પડતી. હૃદય એસા હૈ, એક દૂસરે કા બોલચાલ નહીં ગમતી, નહીં સિવાય ઉદય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોતા હૈ, હરેક કા વ્યક્તિગત. દુઃખી સુખી હોના હરેક કા વ્યક્તિગત હૈ, ઇસમે કોઈ જોઇન્ટલી નહીં હોતા હૈ. જોઇન્ટ ફેમિલી મેં સુખ દુઃખ જોઇન્ટલી નહીં હૈ, ફેમિલી જોઇન્ટ હોને પર ભી સુખ દુઃખ ભી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હોતા હૈ. યોગ્યતા ભી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ હૈ, ઇસકા સુખ ભી અપને કો મિલને વાલા હૈ. યોગ્યતા બઢેગી ઉતની શાંતિ આયેગી, ઉતની નિરાકુલતા આયેગી, ઉતના સુખ અપને કો મિલેગા. ચાહે ચાહે જો પરિસ્થિતિ હો, હમ સુખી હમારે સમય ये सुखेच्छा मिटने से बहुत शांति, मानसिक शांति तो बहुत बढ़ जाती है. और वो केवल आर्टिफिशियल मानसिक शांति नहीं है, ये यथार्थ मानसिक शांति है. क्योंकि इसमें दक्षिण मुख की मान्यता है, सिर्फ चारित्र मुख की मान्यता हो और दक्षिण मुख की मान्यता न हो, ऐसी मानसिक शांति होती है यथार्थ. उसमें कोई दम नहीं है, वो टिकने वाली चीज नहीं है. लेकिन ये यथार्थ है तो आगे जाके वो आत्मशांति का कारण बनेगी. तो कृपाणुदेव आगे लिखते हैं एक चिट्ठी पत्र में लिखते हैं कि जिसके इंद्रिय विषयों के प्रति परिणाम आर्त है, उनके लिए आत्मशांति का कौन सा अवकाश है? जिनके परिणाम आर्त रहते हैं, मैं इसको मिलाऊ, इसको जुटाऊ, इसको मिलाऊ, इसको मिलाऊ, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको आत्मशांति की कहाँ जगह है? कौन सा अवसर है उसमें? कोई नहीं. मैं वो मात्सर्य की बात से तो मानसिक शांति तो ऐसी आई कि संसार में ऐसे मानसिक शांति वाला मिलना देखना मुश्किल हो जाए और आत्मिक शांति का अवसर उनको हो सकता है. योग्यता में ये योग्यता का प्रकरण चलता है, मुमुक्ष की योग्यता का ये प्रकरण है. ये बात परम दीनता की न्यूनता, अभाव नहीं लिया है देखो, मुमुक्षु है ना, तो सत्पुरुष के प्रति उसको भक्ति और विनय तो होता ही है. ज्ञानी के प्रति उनको विनय न हो कहलाने लायक नहीं है, या तो उसके लिए योग्यता का प्रकरण ही समाप्त हो गया. उसको तो अयोग्यता का प्रकरण चालू हो गया, जिसको विनय न हो. पर अविनय हो, अभक्ति हो, विरोध हो, उसकी तो सोचना ही नहीं है, वो तो अनंत संसार का कारण बता दिया गया उन्होंने. सत्तू उसके गुणग्राम करना वो तो निर्माण का कारण है, और उसकी विराधना करना, उगलना करना वो तो अनंत संसार का कारण है. 357 पड़ा. लेकिन यहां तो विनय है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसको न्यूनता कहते हैं. नहीं है उसकी बात नहीं है, विराजना वाले की बात नहीं है.
जितना होना चाहिए इसमें असीम होना चाहिए
है,
असीम.
ये तो कहेंगे परमेश्वर बुद्धि, इसको छोड़ करके तो बात में कहेंगे
लेकिन न्यूनता माने क्या है, तो विनय तो है, पर ये विनय है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसमें वंचना बुद्धि रहती है। एक प्रकरण उन्होंने लिखा है, उसी समय एक पत्र लिखा है, वंचना बुद्धि क्या है। वंचना मैंने क्या कि अपने को पता नहीं चले, ऐसे कोई अपने को क्षेत्रपिंडी करता है तो पता चलता है, नहीं पता चलता है, बाद में ही पता चलता है, घरे अपने को जाली नोट दे दिया, वो स्वरूपों के नोट सच्ची नहीं है, वो ले लिया उस वक्त तो सच्ची बन कर ले लिया था। ऐसे ये न्यूनता वाली बात ऐसी होती है कि वंचना बुद्धि स्वयं की होती है, स्वयं वंचित हो जाते हैं, अपने आप से क्षेत्र में हो जाते हैं, तो धोखा में क्या रहता है, अपने को तो विनय है, अपने को तो भक्ति है, अपन थोड़ा विरोध करते हैं दूसरे की तरफ, अपन थोड़ा उपेक्षा करते हैं, अपन तो विनय भक्ति करते हैं, लेकिन पहचान ही नहीं होती है, या ओक संज्ञा से भी इतनी स्वीकृति नहीं है, न्यूनता वाली बात है कि मुमुक्षु की योग्यता को रोकने वाला बाधक कारण है। तीन बाधक कारण की चर्चा कर रहे हैं,
न्यूनता की बात भी कम विचारणीय है, जब जो कुछ विनय होता है वो सहज हो, सहज स्फुरित होता है ऐसा विनय का, अधिकांशतः ऐसा भी घटित होता है कि विनय का प्रकार तो रूढ़िगत हिसाब से लोक दृष्टि से
भी हो सकता है, हुआ करता है,
रूढ़िगत
हिसाब से होता है, लोक संज्ञा से होता है, तो दूसरा ज्यादा करते हैं तो उसके कारण से दिखा देखी से होता है, अनेक प्रकार होते हैं,
जिसको विनय सहज
ये सब न्यूनता में जाता है। तो सही सही परिस्थिति क्या है कि पर पहचान से बिना पहचान सहज और पूरा जितना होना चाहिए तो संभव नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर पहचान आवश्यक है, पहचान आवश्यक है, अगर पहचान नहीं है तो ओक संज्ञा है, ओक संज्ञा में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहने वाली है, ये बात है। तो ये योग्यता को पालू जीवन ऐसे कारण दिए हैं कि ये अवरोधक कारण मिट जाए, मुमुक्षु की भूमिका में तो उसको पदार्थ निर्णय हो ही हो, और जिसको पदार्थ निर्णय होवे उसको सम्यक दर्शन होवे ही हो, ऐसी बात की चर्चा चली है। ऐसा नहीं है कि ऐसी योग्यता होने पर भी लाभ होगा भी नहीं भी होगा, ये बात ये करती है, ऐसा बहुत जो लाइन लाइन बनी है वो ऐसी है कि इस लाइन में आने पर काम नहीं हो, या अनंत काल का फायदा नहीं हो, यानी निर्वाण पद नहीं मिले ऐसा नहीं है।
भाई जैसे समाज ने कोई विवेक नहीं, जैसे बीजा विवेक करे थे, ईजू ने कोई विवेक करवा होते, અને છતાં પણ વિવેક કરતા છતાં પણ વિવેકમાં ખામી રહી જાય છે, અહીંયા તો ખાલી પહેચાનનો
પહેચાન એ કારણ એને ઓળખાણ નથી, જો ઓળખાણ હોય તો એવું ન બને,
સરળ રીતે જ ભાવ
આવે। દ્રષ્ટાંત દે છે, રાજકોટમાં એક ભાઈ દિવેલા ટિકિટ પાવતો જેમ શામભાઈ પછી છોટી ઉંમરતા 45 સાલ કરી, કૃપાલુ દેવ કે પ્રતિ ઉતની ભક્તિ ઉતની ભક્તિ, તો બાત કરતે કરતે રોને લગ જાય, અરે વો ક્ષમાપના માઇક પર બોલે, કૃપાલુ દેવ કે વો ક્ષમાપના શબ્દ તો પ્રચલિત હૈ હજારો બાર કે સમાજ મેં તો એ રોજ ને બોલતે હૈ જૈસે વો ઉધર અપન ભગવાન મેં બોલતે થે, लेकिन घर्षण में लोग समाप्त ना बोले माइक पर पूरा ऑडियंस बोलने लग जाए, उनकी आवाज
ખુતરોને લાગે ને કેવું આવે છે ઉતના ઇસકા ફીલિંગ એક્સપોઝ હતા ઉતની ભક્તિ હોય ભક્તિ મેં ક્યાં બોલે મુજે કહો નહીં દિખ રહે હર જગ્યા મેં તો ઉસકો હી દેખતા હું એસા હી મેરા માઇન્ડ હો ગયા હૈ મેં અપને કોલેજ સે બહાર નિકલતા હું બસ સ્કૂટર કો ફીટ લગાતા હું ચાલુ કરતા હું તો મુજે લગતા એક ઘરે પીછે બેઠ ગયા આકર કે બસ મેં મુસાફરી કરતા હું બાદલ બાદલ દેખતે તો બાદલ પર ઉનકો ધ્યાનસ્થ રહેતા હું દેખતા હું તમને મેરે આગે ચલતે હુએ દેખતા તમે મેરે પીછે આતે હુએ દેખતા કે મારા મેરી હાલત હો ગઈ સાયકોલોજી પોલીસ ઉસકી ભક્તિ કે પીછે કિતની હો ગઈ હૈ તો ઉસકો પોલીસ કે સેકો થોડા ઉસકો પ્રકાશ ડાલ કે દેખીએ આપને उनके पास देखिए चाहे आपको देखा है शक्ल पर कोई आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा वो नहीं दिख रहा ये पौतिक आकार है ये आत्मा का आकार इधर है पहचान से वो परमात्मा दिखता है मनुष्य नहीं दिखता है पहचान और बिना पहचान भक्ति भले ही अप्रतिम हो फिर भी और भक्ति हो और भक्ति उसकी एक सीमा है और पहचान वाली भक्ति उठती है उसकी कोई सीमा नहीं है एक सीमित है एक असीमित है ऐसी बात तो इसके लिए परमात्मा बुद्धि परमेश्वर बुद्धि जो दूसरे कही है इस चीज को नहीं होती है तो उसमें मूर्ति नहीं दिखती है मूर्ति देखते हुए भी उसमें परमात्मा भाव आता है मूर्ति गर्म हो जाती है शक्ल गर्म हो जाती है ये एक दूसरी परिस्थिति है जो पहचान वाली है
पहचान दृष्टि क्यों केवल है पहचान दृष्टि क्यों केवल है पहचान
दृष्टि केवल पहचान आवे इनको सोचा तो पहचान के लिए तीव्रता आ जाए जैसे कोई चीज हमारी ऐसी खो गई कि हमारा आधार जिंदगी का पूरा इसके पर है हमारा जीवन आधार किसका हो ऐसी चीज को हम खो बैठते हैं तो हमारी क्या परिस्थिति होती है तो उसको ढूंढो कहां खो गई वो चीज हम जिंदा नहीं रह सकते ये हालत पहचान करने के लिए आती है पहचान हो जाती है समझा वो खिलना रह जाती है और हम असीम कैसे कहते हैं कि परमेश्वर में क्या उनसे सीमा रही परमेश्वर बुद्धि में कौन सी सीमा रही क्योंकि इसके आगे कोई है परमेश्वर खुद ही असीम है अपने गुणों से देखिए बाबू जी के विषय में क्या हुआ उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या लिखा है कि ये गुरुदेव देखते हैं उसको भी गुरुदेव नहीं मानता इनका जो शरीराकार है हायर पर्सनैलिटी का मैं गुरुदेव इसको नहीं मानता और ये प्रवचन फरमा रहे हैं इसको भी मैं गुरुदेव नहीं मानता क्योंकि इनके विकल्प है ना और इनकी जो त्रिकाली आत्मा है उसको मैं देखती हूँ उसको भी मैं देखता हूँ इसकी ध्रुव मूर्ति को अधिक सजीवता से मैं देखता हूँ पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये अनंत कृष्ण करते ही अधिक है क्या सीमा रही उसकी ऐसे नहीं लगे अनंत कृष्ण करो मैं एक तीर्थंकर नहीं ना करो एक तीर्थंकर भी असीम है तो अनंत कृष्ण कर वहां लगा दिया तो स्पीच ही ऐसी थी पावर तो समृद्ध समय आगे कोई कोई बात नहीं रह जाती अनंत कृष्ण ऐसी भक्ति आती है पहचान और ये साक्षात्कार है ये पहला संकेत है दूसरा संकेत का पदार्थ निर्णय का कारण है दूसरा तीसरा संकेत का कारण है और ये निर्वाण का कारण है तो फिर ये बैठ गए और पदार्थ का ए निर्णय ये पदार्थ की पहचान ये आत्मस्वरूप का ए निर्णय मेरे मुंह की पहचान का
કૃષ્ણ.